अंश को खेलता देखकर आस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और अगले ही पल उसे भी अपना दिल हल्का फुल्का सा महसूस हुआ था। फिलहाल थोड़ी देर के बाद अरमान सिंघानिया हॉल में आया था और जैसे ही वो वहां आया उसने लाल आंखों से आस्था को देखा था। उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल हो रखी थीं कि सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि बाकी सब लोग भी अरमान की आंखें देखकर डर गए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अरमान बिना किसी से कुछ कहे तुरंत ही वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं आस्था को अरमान का ये व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब सा लगा। उसके दिल में कुछ अजीब से ख्याल पैदा हुए, लेकिन उस वक्त वो फिलहाल अपनी खुद की परेशानियों में ही उलझी हुई थी, इसीलिए देर ना करते हुए उसने मारिया को एक नज़र देखा और उससे कुछ बात करने के इरादे से उसके पास जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर लड़कियां काफी ज्यादा थक गई थीं। तभी राधिका बोली थी, मैं रश्मि से मिलकर आती हूँ क्योंकि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। मैंने तो सारा दिन उसे आराम करने के लिए कहा था, हालांकि आकाश जी ने बोला था कि वो उसके साथ रहेंगे, फिर भी मैं उससे पूछ कर आ जाती हूँ। तब राधिका धीरे से रश्मि के कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची उसने देखा कि रश्मि गहरी नींद में सोई हुई है और पास में ही कुछ मेडिसिन रखी हुई है। तब राधिका समझ गई थी कि शायद अभी भी रश्मि की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी तभी उसकी टक्कर आकाश से हो गई। तब राधिका आकाश को देखकर बोली थी, रश्मि की तबीयत अब कैसी है? तभी आकाश बोले थे, अरे वो अब काफी ठीक है, अब तो काफी बेहतर महसूस कर रही है, बस थोड़ा सा इस बात को लेकर उदास थी कि आप लोगों के साथ नानी माँ से मिलने नहीं जा पाई। तब राधिका बोली थी, नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में चलेंगे, वैसे भी नानी माँ ने खुद उन्हें सफर करने से मना किया है, राधिका ने बात संभालते हुए कहा। आकाश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला था, थैंक यू उसे देखने के लिए, चलो तुम लोग भी थक गए हो, आराम करो, फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसके पास हूँ। ये बोलकर आकाश ने रश्मि को भी और राधिका को भी आराम करने के लिए कह दिया था। उसने ये भी बताया कि सुमित भी घर पर ही मौजूद है। राधिका ने नीचे अरमान को भी देखा था तो कुछ सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन सुमित तो वहां था ही नहीं। अब थोड़ा सा चौंकते हुए राधिका ने सुमित को कॉल किया था। दूसरी रिंग पर ही सुमित ने फोन उठा लिया और बोला था, मैं बस अभी 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ राधिका, मुझे पता है तुम घर आ गई होगी इसीलिए कॉल किया होगा। ये सुनकर राधिका मुस्कुरा दी थी और बोली, तुम तो कुछ ज्यादा ही समझने लगे हो मुझे। तब सुमित बोला था, एक्चुअली कुछ स्पेशल क्लाइंट्स आने वाले हैं इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करने होटल आया था, लेकिन डोंट वरी मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर सुमित ने फोन रख दिया था। वहीं राधिका का सारा बोझ जैसे उतर गया था, क्योंकि सुमित को झूठ बोलकर जाना उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर वो आस्था का इस तरह से साथ देती है तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और घर के अंदर की थोड़ी बहुत परेशानियां भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। वहीं अब वंशिका जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंची उसने ध्रुव को बेचैनी से टहलते हुए पाया। ध्रुव को इस तरह बेचैन देखकर वंशिका हैरानी से बोली थी, ध्रुव जी क्या हो गया आपको, आप इस तरह से क्यों टहल रहे हैं? तभी ध्रुव ने वंशिका को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था यार, मैंने तुम्हें कितने फोन ट्राई किए लेकिन तुम लोगों का फोन लग ही नहीं रहा था। ये सुनकर वंशिका ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा था, क्या बात है, तो मुझे इतना फोन क्यों कर रहे थे? मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं नानी माँ से मिलने जा रही हूँ बाकी सबके साथ। तभी ध्रुव ने परेशान होकर कहा था, वो तुम्हारे गुरुजी प्रशांत जी, उन्हें होश आ गया है और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं, देखो अब तो रात काफी हो गई है, डोंट वरी उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने हॉस्पिटल में ऑलरेडी काफी सारे गार्ड्स बढ़ा दिए हैं, तो तुम उनकी फिक्र मत करना, हम कल चलेंगे उनसे मिलने। वैसे भी अरमान ने ऑर्डर दिया है कि प्रशांत जी को रिकवर होने के बाद एक बार फिर से एंटीडोट पर काम करना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, समझ रही हो ना मेरी बात? ये सुनकर वंशिका पूरी तरह से खुश हो गई थी। वो बोली थी, अरे फिर तो हमारे लिए काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगी थी कि अगर अरमान का एंटीडॉट बन जाता है तो उसके बाद उसे नहीं लगता कि आस्था को इस तरीके से उसे अपनी जान व इज्जत का खतरा लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब तो कल रात को उनके लिए डिनर भी है, उसके लिए भी तैयारी करनी होगी क्योंकि सब लोगों ने एक साथ बोला था कि पूरा फ्रेंड सर्कल एक साथ डिनर पर आएगा, और वैसे भी वे लोग आस्था को अकेले तो भेज नहीं सकते थे, और वैसे भी आस्था को सम्राट पर शक ना हो इसीलिए सम्राट ने उसकी सभी सहेलियों के साथ उसे इन्वाइट किया था। यही सोचकर अब सब ये सोचने लगी थी कि उन्हें आगे और क्या करना है। तभी जल्दी से वंशिका बोली थी, मैं कल के कल सबसे पहले सुबह गुरुजी से मिलने के लिए अस्पताल जाऊंगी और उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे, डोंट वरी। ये बोलकर उसने ध्रुव को कसकर गले लगा लिया था और सब एक दूसरे को तसल्ली देते हुए साथ बैठ गए थे। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने कमरे से ना जिम रूम में पहुंच चुका था। इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक अलग ही तरह की आग जल रही हो। उसकी आंखों के सामने बार बार सम्राट और आस्था का हाथ मिलाना घूम रहा था, जो किसी भी तरह उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। गुस्से में उसने पंचिंग बैग पर लगातार वार किए और आखिरकार उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके गुस्से और नफरत की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि वो अपना सारा गुस्सा आस्था पर निकालना चाहता था, लेकिन अपने गुरुजी यानी राजवीर की बात मानते हुए उसने अभी आस्था से कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। उसने ठान लिया था कि जब उसके गुरुजी उसे बुलाएंगे उसी वक्त वो जाकर आस्था को रंगे हाथों पकड़ेगा और उसे अच्छी खासी सजा देगा। और वैसे भी पूरे परिवार के लिए तो आस्था एक देवी है। उसका सच वो पूरे परिवार को दिखाएगा और बताएगा सबको कि औरत केवल बेवफा होती है, धोखेबाज होती है। इसी सोच के साथ अब वो बेसब्री से सम्राट और आस्था की एक बार फिर मुलाकात का इंतजार करने लगा था। वहीं आस्था अभी भी अपने कमरे में अंश को सीने से लगाए हुए मौजूद थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इस तरह अरमान की पीठ पीछे सम्राट से मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर उसने एक बार और अपने दिल को मजबूत करते हुए खुद से कहा कि अपने पति के लिए अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो दे देगी। ये सोचकर उसने अपने प्यारे बेटे के गोलमटोल चेहरे की ओर देखा और उसे देखते हुए बोली थी, माँ से नाराज मत होना। मैं जानती हूँ कि आपकी मम्मा आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रही है, आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रही है और शायद इसी वजह से आप मम्मा से थोड़ा रूठे रूठे रहने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर देखना मम्मा डैडी सब साथ में खुशी खुशी रहेंगे। अंश उसे मासूमियत से ऐसे देख रहा था जैसे वो कह रहा हो, मेरी प्यारी मम्मा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आपका और डैडी का बेटा हूँ। आप जानती है ना मैं कितना ब्रेव हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी सुपरवुमन मम्मा सब ठीक कर देंगी। आस्था कुछ देर तक अंश को इसी तरह अपने सीने से लगाए रही। फिर कब वो थककर बेड पर लेट गई उसे एहसास ही नहीं हुआ और अंश भी उसके सीने से लगा लगा उसके पेट के ऊपर लेटकर ही सो गया था।
वहीं अरमान अपने गुस्से को काफी देर तक कंट्रोल करने के बाद जैसे ही अपने कमरे में आया और उसने आस्था और अंश को इस तरह सोते हुए देखा, न जाने क्यों उसे ये पल बेहद प्यारा लगने लगा। उसका दिल कर रहा था कि पूरी रात बैठकर वो बस उन दोनों को इसी तरह सोता हुआ देखता रहे। उन्हें इस तरह सोते हुए देखना उसे एक अलग ही लेवल का सुकून दे रहा था। काफी देर तक वो उन्हें देखता रहा, फिर फिलहाल अरमान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। लेकिन वहां भी उसकी आंखों के सामने वही सब घूमने लगा जिससे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया, फ्रेश होकर बाहर आया और दोनों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए आस्था के बराबर में लेट गया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अविनाश अबीर के साथ मौजूद था। अविनाश ने अबीर की ओर देखकर कहा था, देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आस्था को बेहद पसंद करते हो, लेकिन तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि मेरी बहन सिर्फ अरमान सिंघानिया से प्यार करती है, वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और मुझे नहीं लगता कि वो अरमान के अलावा कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। तभी अबीर बोला था, मैं जानता हूँ यार कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और यकीन मानो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आस्था के सामने आ जाने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो शायद उसके लिए गलत और बेकार साबित हो जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा खुद में सुधार लाने की और जिस दिन आस्था की ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो जाएगी और वो अरमान के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगेगी उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। डोंट वरी, मेरी वजह से उनके बीच कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सुनकर अविनाश मुस्कुरा दिया था और बोला था, रियली अगर आस्था की पसंद अरमान नहीं होता तो मैं तुम्हारी शादी आस्था से ही करवा देता। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, अबीर मुस्कुराकर अविनाश को गले से लगा लिया था। तभी अविनाश बोला था, बस मेरी बहन की ज़िंदगी में जो ये दुख के बादल आए हैं वो किसी तरह छट जाएं और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाए।